Okay, sure.
28th फरवरी 1986 अव्यक्त वाणी। पीछे आने वाले वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी है, कहां भी है, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही क्या है, जीवन है। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुनाया ना, सेवा सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा है, हर संकल्प में सेवा है। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकते कि सेवा का चांस नहीं है। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हैं। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ही है सेवाधारी। 20 फरवरी 1986 बाबा कह रहे हैं पीछे आने वालों को फास्ट जाने का चांस भी विशेष है, इसलिए हर एक सेवाधारी है। सभी सेवाधारी हो या सेंटर पर रहने वाले सेवाधारी है, कहां भी है, सेवा के बिना चैन नहीं हो सकती। सेवा ही क्या है, चैन की निद्रा है। कहते हैं चैन से सोना यही जीवन है। चैन से सोना यही जीवन है। सुना है ना सभी ने, जिसने सोया उसने पाया, खोया नहीं, पाया। अच्छी नींद चाहिए। सेवा ही चैन की निद्रा कहो, सोना कहो। सेवा नहीं तो चैन की नींद नहीं। सुना है ना, सिर्फ वाणी सेवा, सिर्फ वाणी की नहीं, हर सेकंड सेवा, हर संकल्प में सेवा। कोई भी यह नहीं कह सकता, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेश में रहने वाले, कोई ब्राह्मण यह नहीं कह सकता कि सेवा का चांस नहीं। बीमार है तो भी मनसा सेवा, वायुमंडल बनाने की सेवा, वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा तो कर ही सकते हो। कोई भी प्रकार की सेवा करो, लेकिन सेवा में ही रहना है। सेवा ही जीवन है। ब्राह्मण का अर्थ ये है सेवाधारी। तो बाबा कह रहे हैं सेवा ही क्या है, चैन की निद्रा है। चैन से सोना यही जीवन है। निद्रा में ऐसा क्या हो जाता है कि जिससे चैन मिलता है, पहला तो ये प्रश्न है। जब हम नींद करते हैं तो आराम की महसूसता की होती है नींद के बाद। एक तो संकल्प शांत हो जाते हैं, स्लीप में माइंड जो है उसकी गति शांत हो जाती है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड में जो थॉट्स, जो संकल्प तीव्र वेग से, तीव्र गति से चलते रहते हैं, तो ये जो चेतन मन है, बाहर का जो मन है, बाह्य मन है, ये शांत हो जाता है। एक तो ये, दूसरा उसके वजह से आराम का अनुभव होता है फिर जब जागते हैं तो। और अशरीरी आत्मा जैसे कि डिटैच हो जाती है, शरीर जैसे थोड़े समय के लिए पैरालिसिस हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। और नींद में क्या होता है, सपने भी अच्छे अच्छे आते हैं। और नींद में बाबा कहते हैं पाप नहीं होते, नींद के भी पाप है वो दूसरे है, स्लीप सिंस। और बॉडी का रिपेयरिंग होता है, थकान जो होती है वो मिट जाती है, अंतर्मुखी हो जाते हैं स्वयं ही। वैसे तो सारे दिन भर बाह्य मुक्ता है, साइलेंस हो जाती है स्वतः ही। और भूल, फॉरगेटफुलनेस, ऑब्लिवियन, स्टेट ऑफ ऑब्लिवियन, एक विस्मृति की अवस्था है जैसे नींद। उसके वजह से वो जो इतनी चिंता दिन भर जिसके बारे में सोच रहे, कुछ समय के लिए वो विस्मृत हो जाती है। तो उस विस्मृति के कारण जब जागते हैं तो आराम का अनुभव होता है, वो दूसरी बात है। अगर उनको आ गई तो, वैसे अनिद्रा अपने आप में एक सेपरेट विषय है। इनसोम्निया विश्व भर में, देश भर में कितने ही लोग हैं, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी है जिन्हें अनिद्रा के जो शिकार है। चलो वो तो दूसरा विषय है। तो नींद में और क्या हो जाता है? भागदौड़ नहीं होती है, शरीर भी शांत हो जाता है, मन भी शांत हो जाता है। स्वप्न में उठ के चलना उसे कहा जाता है सोमनैम्बुलिज्म, स्लीप वॉकिंग। स्लीप वॉकिंग वो भी एक, वो आरियम स्लीप में होता है, या आरियम स्लीप से भी ज्यादा। वो स्लीप की चार अवस्थाएं हैं, दो प्रकार होते हैं, एक होता है एन आरियम, एक होता है आरियम। एन आरियम मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट, एक होता है रैपिड आई मूवमेंट। रैपिड आई मूवमेंट मतलब तीव्र नेत्र गति वाली नींद, दूसरी होती है गैर तीव्र नेत्र गति वाली नींद, जैसे कि जिसमें आई मूवमेंट्स होती रहती है। सबसे ज्यादा जो हमारी नींद होती है वो नॉन रैपिड आई मूवमेंट वाली होती है। मतलब जैसे हम सोते हैं तो जो नींद चालू होती है उसे कहा जाता है एन आर ई एम, जिसमें आई की मूवमेंट्स नहीं होती है, ऐसा कहते हैं गैर। और लास्ट की जो नींद है हमारी उठने के एक घंटा पहले वाली, उसे कहा जाता है आरईएम स्लीप, तीव्र नेत्र गति वाली। जो पहली नींद है एन आरईएम, उसकी भी तीन स्टेजेस है, एन वन एन टू एन थ्री। एन वन जो स्टेज है स्लीप की, पहली स्टेज है नींद की, जिसमें अल्फा वेव्स होते हैं। ईजी अगर देखा जाए तो अल्फा वेव, जिसमें हम बेड पर लेटे हैं, अभी नींद आई नहीं है पूरी, नींद आने का जस्ट अभी प्रोसेस चालू हो गई है, तो उसको कहा जाता है एन वन स्टेज। एन वन स्टेज से, अल्फा वेव से हम फिर जाते हैं एन टू स्टेज में। एन टू स्टेज जो है ये है थीटा, थीटा वेव जिसमें होते हैं। और फिर एन टू से हम जाते हैं एन थ्री। एन थ्री जो नींद है वो सबसे रेस्टफुल वाली नींद है, जहां पर स्लो वेव स्लीप जिसको कहते हैं, जहां डेल्टा वेव्स होते हैं, जो आराम का अनुभव होता है हमको इतनी घंटे की हमारी स्लीप में, जो कुछ होता है वो केवल एन थ्री जो स्टेज है उसी में होती है आराम का अनुभव। यदि वो एन थ्री तुरंत आ जाए या जल्दी आ जाए तो उसके उतने समय में जो हमें नींद में आराम होता है वो होता है, दैट इज नोन एज एन थ्री स्टेज ऑफ एन आरियम। एन थ्री से फिर हम जाते हैं एन टू में, और फिर जाते हैं आरियम। आरियम जो स्लीप है, और जो ये जो रेस्टफुल वाली स्लीप है जो एन थ्री है, उसमें ही स्लीप वॉकिंग होता है, नींद में चलना, जिसको सोमने, और एक दूसरा होता है स्लीप टॉकिंग, नींद में बातें करना, वो भी एक दूसरी बीमारी है। स्लीप वॉकिंग, सोमनैम्बुलिज्म, और दूसरा होता है नींद में बातें करना, ये सारा होता है एन थ्री स्टेज ऑफ एन आरियम में। एन आरियम अर्थात गैर, जिसको हिंदी में कहते हैं गैर तीव्र नेत्र गति वाली जो नींद है। और जो लास्ट स्टेज है हमारे नींद की वो होती है आरियम स्लीप। आरियम स्लीप अर्थात उठने के एक घंटा पहले वाली जो होती है। तो इस तरह से स्लीप साइकिल इसको कहा जाता है, स्लीप हाइजीन। स्वप्न जो आते हैं वो आते हैं एन थ्री स्टेज में, और जो लास्ट वाली स्टेज है उसमें सबसे ज्यादा आते हैं, पर मतलब आरियम में। आरियम आरियम ये सारी जो प्रोसेस है, अल्फा एन वन में, थीटा एन टू में, डेल्टा एन थ्री में, पर उसके पूरा होने के बाद एक दूसरी नींद है जिसको आरियम स्लीप कहते हैं, रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप, तीव्र नेत्र गति वाली स्लीप। उसमें बहुत सारे स्वप्न भी आते हैं। तो ये तो
उस नींद से पहले उठ जाओ
वो उठ जाए तो बहुत अच्छा।
दोपहर को एक ही घंटा सोते, उसमें ये सारा प्रोसेस होता है,
सब जगह हो जाता है, ये सारा इसमें ये सारी प्रोसेस चालू हो जाती है। तो नींद में ऐसा क्या होता है, हम इसकी चर्चा कर रहे थे कि उससे आराम का अनुभव होता है, तो ये बहुत सारी चीजें उसमें हो जाती है। और ये जो स्लीप वॉकिंग वाली जो बात है, नींद में चलने वाली बात या नींद में बातें करने वाली जो बात है, उसमें व्यक्ति वास्तव में जो कुछ बोलता है ना या जो कुछ करता है वो उसके अवचेतन से निकलता है, सबकॉन्शियस माइंड से निकला हुआ होता है। तो उसमें वो बहुत बार सही बोल देता है। वो वास्तव में स्लीप वॉकिंग में या स्लीप टॉकिंग में जो कुछ बोला जाता है वो, अगर कोई व्यक्ति मतलब झूठ बोल रहा है तो उसको, अगर वो अगर सो जाए तो उसको इस स्टेज में लेके जाए और उससे बुलवाया जाए तो वो अपराध कबूल भी कर लेगा, सत्य बता भी देगा, क्योंकि इसमें सीधा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है सब कुछ। वैसे व्यक्ति कॉन्शियस में छुपाने का कोशिश करता है। खलील गिब्रान करके एक बहुत बड़ा कवि है, उसने एक कविता लिखी है। उस कविता में एक माँ और उसकी बेटी का वर्णन है। दोनों को ही रात में चलने की बीमारी होती है। दे बोथ सफर फ्रॉम, मदर एंड डॉटर सफर फ्रॉम सोमनेम्बुलिज्म, स्लीप वॉकिंग। उसमें माँ और बेटी रात में सो गई, आधी रात को दोनों ही उठ जाती है, दोनों ही गार्डन पहुंच जाती है। ठीक है, वो दोनों माँ बेटी का आपस में बहुत ज्यादा प्यार है, ऊपर ऊपर से जो भी है पर प्यार है, दिखता है। अब जैसे ही गार्डन में पहुंचती है चलती चलती, वो माँ जो है अपनी बेटी को गालियां देने लगती है। बहुत तेरे ही वजह से लोग मुझे अभी कम देखते हैं, जब से तू इस घर में आई है तब से मेरे ऊपर सबका ध्यान कम हो गया है। उसमें तो थोड़ी सौंदर्य की भी बात लिखी हुई है कि पहले लोग, मैं बहुत सुंदर थी, लोग मुझे ज्यादा देखते थे, जब से तू आई है सब तेरे को ज्यादा देखते हैं। तो ऐसी उसको बहुत गालियां देती है, और तेरे वजह से तू मेरा ध्यान नहीं रखती, ऐसा करती वैसा करती। और उसकी बेटी कहती है कि मेरे सारे जीवन का कारण, का दुख का कारण भी तुम ही हो। उसकी बेटी उससे कहती है, अपनी माँ से, तेरे वजह से, आमने सामने नींद में, पर दोनों ही नींद में है, नींद में उठ गई, स्लीप वॉकिंग में गार्डन पहुंची, नहीं गिरते नहीं है उसमें वो वहां जाके फिर वो बेटी भी उसको बहुत गालियां देती, बहुत गालियां देती। उतने में सुबह हो जाती है, ये कविता है, उसमें सुबह हो जाती है और दोनों होश में आ जाती है। फिर माँ कहती है, अरे बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें ठंडी तो नहीं लग रही है। वो बेटी कहती है, माँ तुम यहाँ कैसे आ गई, तुम ठीक तो हो ना, बहुत प्यार भरी बातें चालू। तो इट इज नोन एज स्लीप सोमनैम्बुलिज्म, स्लीप टॉकिंग, स्लीप वॉकिंग। ये एक्चुअली स्लीप डिसऑर्डर्स में आता है, स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, स्लीप की बीमारियां, उसमें ये एक है। दूसरा एक है अनिद्रा, इनसोमनिया, नींद ही नहीं आती है लोगों को, रात रात भर जागते रहते, छत को देखते रहते, बस ताकते रहते या कुछ करते रहते, करवटे बदलते रहते हैं। ये तो बहुत ब्राह्मणों में भी है, कम है थोड़ा, पर संसार की आत्माओं में तो बहुत ज्यादा है अनिद्रा, उसके भी बहुत सारे कारण। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं सेवा ही चैन की निद्रा है। तो नींद में ऐसा क्या होता है, हम उसकी चर्चा कर रहे थे, कि जिसकी वजह से आराम की महसूसता होती है, हमारी आत्मा को, हमारी देह को आराम की आवश्यकता है, और नींद एक मार्ग है आराम का, बहुत सशक्त शक्तिशाली। पर जरूरी नहीं है कि नींद ही एकमात्र चीज है कि जिससे आराम प्राप्त हो जाए। शरीर की नींद की वैसे आवश्यकता नहीं है, नींद एक मार्ग है जिससे आराम प्राप्त किया जा सकता है। यदि यही आराम कोई और चीज से प्राप्त किया जाए तो शायद इसकी आवश्यकता भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द वेज टू गेट रेस्ट, बॉडी रिक्वायर्स रेस्ट नॉट स्लीप, स्लीप इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, परंतु आराम का एक सशक्त साधन कहो, मार्ग कहो, वो नींद है। कई लोग हैं जो सोते हैं परंतु उठते हैं तो थकान, क्योंकि नींद ही नहीं होती है, थकान का अनुभव होता है, रिफ्रेशिंग नींद नहीं होती, एक साउंड स्लीप नहीं होती है। गोलियां खाते हैं एक दो तीन डोज बढ़ा के, फिर भी नींद नहीं आती, तो वो तो एक बीमारी जैसे है अनिद्रा। एक रेस्टफुल, एक साउंड स्लीप हो जाए तो हमें आराम का अनुभव होता है। तो एक जो चीज होती है नींद में, अर्थात एक प्रोफाउंड, एक गहरी आराम की अनुभूति, एक रिफ्रेशमेंट होती है, डिटैच हो जाते हैं, संकल्प शांत हो जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, इतनी ये सारी की सारी चीजें होती है। चाहे फिर हम उसकी वो सारी जो स्टेजेस है, N1 से N2, N2 से N3, N3 से फिर N2, और उसके बाद फिर REM, फाइव फेजेस से पास होते हैं, और फिर लास्ट है अवेकनिंग, जो जिसमें हम जागते हैं। तो सेवा नींद का, नींद में जो अनुभूति होती है, ये सारी जो चीजें बताई, वो अब सेवा में कैसे हो? बाबा कह रहे हैं सेवा ही चैन की निद्रा है। कहते हैं ना चैन से सोना यही जीवन है, जिसने सोया उसने पाया, ऐसी कहावत सुनी है ना निखिलेश भाई कि कुछ और सुनाए? अच्छी नींद करना अर्थात पाना, ऐसी भी कहावत है। हाँ वो दूसरी बात है। योग के समय सोना वो खोना है, परंतु जो नींद का समय उसमें तो नींद ही करना है, जिसने सोया उसने पाया। तो सेवा में आराम का अनुभव कैसे करे? सेवा में वो सारी बातें कैसे आ जाए जो नींद में होती है? क्या कहेंगे? दिल से अगर सेवा की जाए, जैसे उस कहा ना मेरे छोटे भाई का वजन, उसने उस सन्यासी ने जो कहानी सुनाई थी उसमें छोटे भाई का वजन नहीं होता, क्रांतिकारी महावाक्य उसने सुना उस छोटी बच्ची के मुख से, जो उसने किसी वेद पुराण उपनिषद कहीं पर भी नहीं सुना। उस दिन सुनाया था ना, सन्यासी जा रहा है, हिमालय चढ़ रहा है और थका है, धूप तेज है, पसीना आ रहा है, उसका सामान है, और एक पहाड़ी लड़की चढ़ रही है अपने छोटे भाई को कंधे पर लेकर, जो भाई इतना मोटा है। वो पूछता है कि तुम्हें भार नहीं लग रहा है? तो बच्ची क्या कहती है, ये मेरा छोटा भाई है, छोटे भाई का वजन नहीं होता। कैसा क्रांतिकारी महावाक्य है। सन्यासी, उस सन्यासी ने अपने जीवन कथा में लिखा कि कितने उपनिषद, कितने वेद उपनिषद सब कुछ पढ़ा मैंने, परंतु ऐसा महावाक्य कहीं नहीं सुना आज तक, जिससे प्रेम है उसका भार, उसका वजन, उसका बोझ, उसका बर्डन, उसका बॉन्डेज, उसका बंधन नहीं होता। प्रेम तो पूर्ण लगन से, पूर्ण दिल से, हथ कारड़े दिल यारडे, ऐसी जो सेवा की जाती है उसमें फिर किसका अनुभव होता है? निद्रा का। निद्रा में जो कुछ होता है वो सब उस सेवा में अनुभव होगा। और क्या कहेंगे, बहुत सारी पॉइंट्स है। वो करा रहा है, हम खाली निमित्त है, वो इंस्ट्रूमेंट का जो भाव है उसको इतना पक्का कर देना है अंदर ही अंदर। इंस्ट्रूमेंट, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, ये जो भाव है वो इतना पक्का हो जाए, जैसे शिवानी बहन ये इतना पार्ट पक्का कर लिया है कि वो अहंकार आने की गुंजाइश ही नहीं है उसमें। इंस्ट्रूमेंट, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, कराने वाला वो है, द पार्ट ऑफ बीइंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये करावन करण करावन हार की स्मृति, हम कठपुतलिया है वो करा रहा है। इसके लिए कोई भी सेवा में के लिए मना नहीं करना किसी को, जैसे कोई सेवा दी गई हमने कभी की नहीं आज तक, पर दी गई है। एक होता है तुरंत मना कर दो, और मना कर दिया तो किसी को बुरा भी नहीं लगेगा, कोई कुछ कहेगा भी नहीं, बाद में पूछेगा भी नहीं वापस करो। परंतु यदि हमने हाँ कर दिया तो वो योग्यताएं भर जाएगी उसमें, उस आत्मा में, यदि हमने हाँ कर दिया। जैसे अभी अभी एक बहन ने हमको अनुभव सुनाया कि सेंटर पर किसी भाई ने शरीर छोड़ दिया, एक अनन्य भाई थे। तो बड़ी बहन ने कहा कि प्रोग्राम जो होता है सेंटर पे आप कंडक्ट करो। तो उस बहन ने कहा ये प्रोग्राम कंडक्ट करना मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मतलब इस तरह के। तो उनकी बहन जी ने उन्हें समझाया कि नहीं, इंस्ट्रूमेंट है ना, तो बाबा जैसे वो चाहे उसको कराने दो, हम अपनी इच्छा क्यों लाए उसमें कि मुझे ऐसे ही प्रोग्राम कंडक्ट करने हैं, ये वाला नहीं करना है। और फिर उसने किया भी और खुशी भी हुई। तो इंस्ट्रूमेंट, मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, मैं निमित्त हूं, वो करा रहा है, और उसको पता है ना कैसे कराना है, उसको पता है ना हमें वो पावर, हमें वो योग्यता है ही नहीं, अगर नहीं है तो वो भर देगा। काम किसका है? उसका काम है, वो सोचे, उसका टेंशन, उसका हेडेक, उसको। तो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाबा ने एक मुरली में कहा है, पूरा महावाक्य तो हमें याद नहीं है, परंतु उसका भाव ऐसा है, बहुत ही सुंदर महावाक्य है, कि जिसमें बाबा ने कहा है जो बच्चे अपनी जिम्मेवारी को, अपनी जो भी ड्यूटी दी जाती है या सेवा दी जाती है उसे जिम्मेदारी समझकर करते हैं और सब कुछ बाप पर अर्पित कर देते हैं उस जिम्मेवारी को। वो ये समझते हैं ये बाप की जिम्मेवारी है। पहले तो जो जिम्मेवारी उनको मिलती है वो पूर्ण स्वीकार कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, जिम्मेवारी से करते हैं, और करते करते ही वो जिम्मेवारी ये समझते हैं कि जिम्मेवार बाप है, तो बाप रिटर्न में उनके लिए जिम्मेवार है। कंप्लीट महावाक्य हमें याद नहीं, परंतु इसमें तीन पार्ट है। पहला कि मैं जिम्मेवार हूं और मुझे ये करना है, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई हैव टू डू दिस, एक। फिर दूसरा कि ये मुझे दिया गया इसके लिए मेरी जिम्मेवारी है, मैं इसको करूंगा। फिर दूसरा अपनी जिम्मेवारी को बाप को दे देते, तो बाप रिटर्न में स्वयं जिम्मेवार हो जाता है उस सेवा के लिए।
सोचने का काम भी मैं करूंगा,
जब तुम मेरी याद में मगन रहोगे तो तुम्हारे लिए सोचने का काम मैं करूंगा, असोच भव।
बड़े-बड़े भाई उनको भक्ति पर रहने जाते हैं, उधर सोने का भी काम नहीं होता है, इधर का ट्रेन आधा घंटा एक घंटा लेट है, सारा दिन काम तो लगता है।
तो हमको याद है जब हम पूना में गए थे तो रात को 12 बजे पहुंचे थे, जहां वो तो पूना तो जल्दी पहुंच गए थे, पर वहां से जहां जाना था वो रात को 12 बजे, और सुबह 4 बजे से भट्टी चालू अमृत वेला और वो पूरा दिन भर चला, पहला ही दिन था। और जो जो कुमार उसमें आए थे कुमार भट्टी में, वो सब बाइक पे और कहीं दूर दूर से, कोई गोवा से, कोई कहाँ से, और वो जितने आए थे वो सब रात का ट्रेवल करके आए थे, मतलब दोनों तरफ से, परंतु नींद कहीं पर भी नहीं, ना इधर ना उधर। तो जब लगन होती है तब उसका अनुभव नहीं होता है। और क्या कहेंगे कि सेवा ही नींद का साधन बन जाए, या फिर नींद में जो अनुभूति होती है वो सेवा में अनुभव हो।
सेवा
लगा
अधूरी की जाए पूरी कर दो तो
अधूरी की
बीच
बजाय पूरी कर दो, और दूसरों की दुआएं भी मिलती है। अगर हम मन से करें, लगन से करें और दूसरों को संतुष्ट करें सेवा में, तो उसकी जो दुआएं मिलेगी वो सूक्ष्म ऊर्जा जो है वो अदृश्य है, दिखती नहीं है, दिखाई नहीं पड़ेगा इस व्यक्ति में इतनी पावर, इतनी ऊर्जा कहाँ से आ रही है, शायद कुछ कर रहा है, शायद दुआएं है। दुआएं भी अदृश्य है, ऊर्जा भी अदृश्य है। तो वो अदृश्य दुआएं, वो अदृश्य शक्ति जो है आत्माओं की, वो हमें मदद करती है। और टाइम पर किसी को सहयोग देना, समय पर सहयोग दे देना, तो सूक्ष्म दुआएं वहां मिल जाती है। और क्या कहेंगे, सेवा में क्या हो तो उसमें फिर थकान का अनुभव नहीं होगा,
दूसरों को चांस दे दो,
दूसरों को चांस दे दो आगे बढ़ाने का, आगे बढ़ाओ दूसरों को, तो फिर खेल खेल में सेवा करो, सेवा का बोझ ना हो, टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, कि जैसे खेल खेल में कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं उसको, उसको फन एंटरटेनमेंट बना दे, उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो। सेवा जो हो ऐसी, हम अपनी योग्यता डेवलप करें कि हम उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें जो हमें सेवा मिली है, ताकि उसमें इंटरेस्ट हो। जैसे कोई भी फील्ड में कोई भी स्टूडेंट जाता है, जैसे इंजीनियरिंग में एंट्री किया, उसको थोड़ी इंटरेस्ट होता है पहले से, जरूरी नहीं है सबको होगा, 100 की अगर बैच है इंजीनियरिंग की तो हर एक को थोड़ी इंटरेस्ट होता है। जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, इंटरेक्ट करते जाते हैं स्टूडेंट्स बाकी लोगों से मिलते हैं, फिर इंटरेस्ट डेवलप होता है, फिर आगे आगे बढ़ते हैं उसमें। उसी तरह मेडिकल में, उसी तरह किसी भी फील्ड में, तो ज्यादा से ज्यादा जानना अपनी सेवाओं के बारे में, जानकारी हासिल करना, उससे इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि, इंटरेस्ट, शौक, हॉबी बन जाए वो सेवा। और क्या करना, डिवाइड करना। हाँ, एक ही नहीं कि मैं ही सब कुछ करूंगा, डिवाइड करना सेवा को, ऐसे नहीं कि पकड़ के रखना ये मेरे ही अधिकार है सारे मेरे सिवा कोई नहीं करेगा, ये जो है ना इसमें भी अहंकार है एक सूक्ष्म। दूसरों को दे दो, दूसरों को काम दे दो और स्वयं
प्रॉब्लम ट्रांसफर
तो डिवाइड कर देना, शेयर कर देना, ट्रांसफर कर देना। हाँ, नहीं, ये वाली बात नहीं ये भी हो सकता है, उसमें मिसयूज तो हर चीज में गड़बड़ कर सकती है, धोखा तो आत्मा स्वयं को कहीं पर भी दे सकती है। हाँ तो ये भी एक सेवा में, और श्रीमत अनुसार करना, याद में करना, आत्माभिमानी स्थिति में करना, स्वमान में कार्य करना, निमित्त व निर्मल वाणी, वो सारी जो बातें हैं बाबा ने सेवाओं के लिए कहा। निरंकारिता का भाव, अथक, निरंतर, ऑलराउंडर, सेवाधारी, ऑलराउंडर, और संतुष्टता, और एक उसमें स्वमान में सफलता, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है, इस स्वमान में सेवा करना तो सफलता प्राप्त होगी, हल्के भी रहेंगे, लाइट रहना। दूसरा है सेवा में लाइट रहना, बोझ ऐसा ना लगे कि ये भी सेवा है वो भी सेवा है, और बहुत सारी चीजों में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर देना। हर व्यक्ति बहुत सारे काम नहीं कर सकता है, हाँ बहुत सारी चीजें नहीं, वो दूसरी बात है, हर हर एक सेवा मैं ही करूं, मुझे ही करना है, ये सारी चीजें मुझे अकेले को करना है, ये नहीं। हर एक इस दुनिया के तमाम काम नहीं किसने हैं, इसने क्या है वो कहावत, इस दुनिया के काम नहीं किसने किए तमाम, मतलब हर एक व्यक्ति सारे ही काम नहीं कर सकता,
दुनिया के काम नहीं किए किसने तमाम।
हाँ दुनिया के काम नहीं किए किसने तमाम, अर्थात मास्टर ऑफ ऑल ट्रेडल्स जैक ऑफ नन कहावत है इंग्लिश में, सभी थोड़ा 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 करना पर आता कुछ भी नहीं, फिर एक ही इसमें मास्टर ऑफ ऑल ट्रेडर्स बट जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स पर मास्टर ऑफ फ्यू होना, एटलीस्ट फ्यू तो हो जाए मास्टर, एक ना एक धड़ाधड़, क्या कहते हैं चिंदिया मराठी में कहते हैं ना, कहावत है, तो वे वाला अवस्था ना हो हमारी। और क्या चाहिए सेवा में, और एक बात, साक्षी भाव, चलो ये भी है कि हम अपनी सेवा में साक्षीपन हो, हाँ निस्वार्थ भाव, ये एक बहुत है, सकाम वाली जो सेवा है, सकाम भाव है, स्वार्थ भाव है, वो वाली चीज उसमें नहीं हो। कर्म कर दिया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म किया और छोड़ दिया बस, फिर उसके बारे में उसकी फ्रूट्स, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम, कर्म और कर्म का परिणाम दोनों के प्रति साक्षी भाव, और नाम मान शान की कोई कामना ना हो उसमें, उसमें एक भाव हो कि सेल्फ सैक्रिफाइसिंग एटीट्यूड हो, कि स्वयं को स्वाहा कर देना, अर्पण कर देना, हाँ आत्माभिमानी स्थिति, आत्मिक दृष्टि, बाप की याद, ये सारी चीजें उसमें हो, और निपुणता होनी चाहिए। हम जो भी कर्म करें, वही कहा कि उसके बारे में इंटरेस्ट बढ़ाते जाए, उसके बारे में पढ़ते जाए, जानकारी हासिल करते जाए, ताकि हमारी जो निपुणता है, दक्षता जो है, स्किल जो है, द मोर वी बिकम डेक्स्ट्रस, ज्यादा से ज्यादा हम निपुण होते जाए उस कार्य में, वो प्रवीणता हम में आती जाए, स्किलफुलनेस उस कार्य के प्रति, उस सेवा के प्रति, तो हम लाइट रहेगा, फिर हम उसमें मास्टर बनते जाए अपने अपनी सेवाओं में, और भी इजी नेचर हो, बहुत कठोर स्वभाव नहीं हो, कड़क स्वभाव ना हो, फ्लेक्सिबल हो, और रेजिलियंस हो हमारे अंदर, जिसमें हम फ्लेक्सिबल हैं, रेजिलियंस शब्द है इंग्लिश का, फ्लेक्सिबल इधर उधर, हाँ लचीला हो, वो लचीलापन हमारे अंदर हो, नहीं तो बस ऐसा ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं, समय को देखकर, व्यक्ति को देखकर, परिस्थिति को देखकर मोल्ड करना चीजों को, सेवा का आनंद ले, सेवा ही आनंद बन जाए, मन की डांस होती रहे सेवा करते समय, सेवा आनंद का एक साधन बन जाए, जैसे सेवा की और आनंद का अनुभव हुआ। और एक व्यापारी लोग क्या करते हैं, रात भर अगर कोई बाबा उदाहरण देते हैं ना, दुकान कमाई, तो कमाई जब होती है तब थकान होती है क्या, रात रात भर जागते हैं तब थकान नहीं होती है, और भी कुछ, समय का महत्व तो समझ कर बुद्धि में रख कर सेवा करें तो वो चैन हो जाएंगे, और दाता विदाता वरदाता का भाव हो सेवा करते हुए, कि हमें देना है, हम स्टेज पर हैं, मास्टर शिक्षक सारे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, नहीं आज का नहीं, आने वाले संडे मधुबन निवासियों से मुलाकात, हम मास्टर शिक्षक हैं, सारे स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, तो ध्यान रहेगा भाव क्या है, भावना क्या है, रहम कृपा दया सब प्रकार की भावना। और एक है दृढ़ता, या उसके साथ कहो डिटर्मिनेशन के साथ भी डेडिकेशन, अपने कर्म के प्रति सब कुछ समर्पण भाव, इतना समर्पण भाव उस कर्म के प्रति कि सब कुछ स्वाहा कर देना है इसके लिए। अच्छा अच्छा, तो वो जो भाव है, वो जो भाव है बहुत श्रेष्ठ भाव है। इसमें एक मुझे उदाहरण याद आता है, ऐसे कई सारे अनाम योद्धा और वीर हुए हैं जिनका कहीं ऊपर इतना नाम नहीं है, वैसे ही एक अनाम योद्धा जिनका नाम था बाजी प्रभु देशपांडे, महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज के जीवन में एक प्रसंग है जिसमें पन्हाला दुर्ग है कोल्हापुर से लगभग 20 किलोमीटर। उस समय 1660 में जैसे वो बाजी प्रभु और शिवाजी महाराज जैसे उसको बीजापुरी फौज ने पूरा घेर लिया था, बचने का कोई मार्ग नहीं था। वो वहां से उनका एक हमशकल था शिवा नाभी, उसको उस सेना में भेज दिया जैसे वो शिवाजी है, और ये दोनों यहाँ से अपनी एक सेना के साथ 600 की टुकड़ी के साथ वहां से निकल पड़े पन्हाला से विशालगढ़ की ओर। तो बीच में एक पावनखिंड वहां पर वो रुके जहां पर बाजी प्रभु ने कहा कि आप आगे चले जाओ, इस सारी सेना का सामना मैं करूंगा अकेला, 4000 की वो सेना। और मतलब ये जो युद्ध है, बाजी प्रभु वहीं रुक जाता है और शिवाजी को कहता कि आप चढ़ो गढ़ पर, दूसरा विशालगढ़ जो है उसके ऊपर आप चढ़ो 300 फौज के साथ, 300 को लेकर मैं अकेला रुकता हूँ, बाजी प्रभु और 300 और जो सेना उनका पीछा कर रही है उधर से, क्या नाम था उसका, जौहर सिद्धि, उसका जो हेड था बीजापुरी सेना का, उसका सामना मैं अकेला करूंगा, सिद्धि जौहर, उसका सामना मैं अकेला कहूंगा। शिवाजी महाराज कहते ये मैं कर ही नहीं सकता, शिवाजी से लगभग 15 साल वो बड़े थे बाजी प्रभु, और वो पर कहते हैं कि नहीं आपको जाना पड़ेगा, बाजी प्रभु उनको कहते हैं मैं सारी सेना को देखूंगा। लाखान सा पोशिंदा जगला पाहिजे, हजारों मेले तरी चालते, लाखों मर गए तो भी चलेगा, पर लाखों का जो पोशिंदा है राजे तो जगला पाहिजे। तो वहां पे दिखाया है कि शिवाजी निकल जाते हैं और वो अकेला इतना फाइट करता है और मर जाता है। मतलब ये एक ऐसा उदाहरण है, मैं तो कहूंगा महाराष्ट्र क्या सारे विश्व भर में ऐसा कोई उदाहरण नहीं, लास्ट तक। और वो एक वचन लेता है शिवाजी महाराज से, मैं तब तक फाइट करूंगा जब तक तोफ की 3 आवाजें नहीं हो जाती, जब आप पहुंच जाओगे ऊपर विशालगढ़ में और तोफ की 3 आवाजें होगी तो ही मैं रुकूंगा। और वो तो उसको पूरा जख्मी घायल हो जाता है पर अकेला लड़ते रहता है। तो ये जो उदाहरण है, ऐसा डेडिकेशन कर्म के प्रति, सेवा के प्रति, सर्वस्व स्वाहा करने का जो भाव है कितना ऊंचा है। बाजी उसमें एक वाक्य है, तुमच्या सारख्यांनी मराठा शाही सा मंदिर बांधला है, वो शिवाजी उससे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से मराठा शाही का जो मंदिर है, यू आर रिस्पॉन्सिबल, तुम जैसे लोगों की वजह से उसने वो पावन किया, इसके लिए उसका नाम पावन खिंड है, पहले नाम अलग था उसका। तो कहने का भाव एक ही है कि जो भी हम कर्म करें, जो भी हम सेवा करें, उसमें इतनी डेडिकेशन, इतनी श्रद्धा, इतना निश्चय, इतना सरेंडर, इतनी निष्ठा, इतना वो सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एटीट्यूड हो। अभी उसको क्या, वो तो कह भी सकता था क्योंकि शिवाजी तो खुद रुकने को तैयार थे। वो कहते मैं तुमको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगा, ये तो कायरता होगी, अकेला तुमको छोड़ देना, 4,000 की सेना पीछे आ रही है, वो तो छोड़ के जाना मतलब मर जाना निश्चित है, वो उसे भी पता था, परंतु फिर भी। तो ऐसी डेडिकेशन हमारे कर्म में हो। ओम शांति।